हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जैसे ही मुराद ने ये कहा, इनायत के दिल ने अचानक से धड़कना ही बंद कर दिया था। उसे मालूम था कि अगर ये हुआ तो कयामत आ जाएगी। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और लगभग मुराद से भीख मांगने लगी। नहीं मुराद, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। इनायत अपने और जिब्रान की जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर शायद इस समय मुराद का गुस्सा इतना बढ़ा हुआ था कि वो इनायत की बात सुनने के इरादे में ही नहीं था। उसने गुस्से में इनायत को देखा और ड्राइविंग करते हुए कहा, आप इस बात के लिए मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, उसने साफ तौर पर मुकरते हुए कहा। इनायत का पूरा चेहरा डर से भर गया था। उसने फिर भी मुराद को अपना अच्छा दोस्त समझते हुए उसके सामने कहना शुरू किया, प्लीज मुराद, प्लीज मेरी बात मानो, अपने भाई को कुछ मत बताओ, अगर ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी, वो मुझे जान से मार देंगे, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत बताना, वरना वो मुझे मार देंगे, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अचानक से एक झटके से गाड़ी रुक जाती है। इनायत आगे डैशबोर्ड से लगते लगते खुद को बहुत मुश्किल से बचाती है, लेकिन मुराद का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी नसें फूल रही थीं, वो जोरों से सांस ले रहा था। उसने गुस्से में इनायत की तरफ देखते हुए कहा, कौन था वो? जिब्रान, पालघर में वो मेरे पड़ोस में रहता था, इनायत एक सांस में मुराद को देखकर ये कहती है। तो मुराद गुस्से में उसे देखकर कहता है, और वो तुम्हें किस करने वाला था? क्यों? क्योंकि हम दोनों एक रिश्ते में हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। रियाज मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, ये शादी पूरी तरह से एक धोखा है, इसमें मेरी मर्ज़ी कहीं से भी शामिल नहीं है। मैं हमेशा से ही जिब्रान से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने जिब्रान के साथ भागने का फ़ैसला कर लिया है, और आज हम दोनों भागने वाले थे। उसने एक ही सांस में सारा सच उगल दिया। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोले जा रही है, शब्दों को सही से जोड़ भी रही है या नहीं, लेकिन उसने एक बार जो बोलना शुरू किया तो फिर बोलती चली गई, फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। मुराद गुस्से में इनायत को देखते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या इनायत? कुछ करने से पहले तुमने सोचा नहीं कि अगर रियाज भाई को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? कयामत तो बाद में आएगी, सबसे पहले तुम पर कहर टूटेगा। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, इनायत ने कांपते हुए आवाज़ में डरते हुए मुराद को देखकर कहा। भाई को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी, भाई जितने ज़िद्दी इंसान है उतना ही उनका गुस्सा उन पर हावी रहता है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम किसी और से प्यार करती हो, उस लड़के के साथ साथ तुम्हें उनके गुस्से की आग से कोई नहीं बचा सकता है। तुम नहीं जानती हो इनायत कि वो अपने लोगों के साथ धोखा करने वालों के साथ क्या करता है। एक बार एक आदमी ने बस उनकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जिससे उन्हें कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ था, हमारे दुश्मनों को दे दी थी, और भाई ने उस आदमी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवाकर पूरे शहर में फेंकवा दिए थे। सबको पता था ये काम किसने किया है, लेकिन भाई के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो अपने पीछे धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करते हैं। इनायत का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया काली हो गई है, और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस इस वक्त जिब्रान के बारे में सोच रही थी। उसे जिब्रान की जान की परवाह थी। उसने मुराद की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुराद, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, हमें बचा लो, हमें इस कैद से बाहर निकालो, प्लीज प्लीज मुराद, प्लीज। इनायत जिस तरीके से गिड़गिड़ा रही थी, उसके सामने जिस तरीके से भीख मांग रही थी, मुराद को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वो एक गहरी सांस छोड़ता है और इनायत को देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ आखिरी बार, और वो भी इसलिए कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन अगर भाई को कुछ पता चल गया तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इनायत को डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, ठीक है मैं समझ गई, बस अभी के लिए हमारी मदद कर दो। प्लीज तुम जिब्रान को रियाज के हवाले मत करना, वरना वो बिना सोचे ही उसे मार डालेगा, प्लीज। मुराद गहरी सांस लेता है और हाँ में सर हिलाता है। ठीक है, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक मेरी पहुँच है, और मैं तुम्हारी सिर्फ एक छोटी सी मदद करूँगा। उसके आगे अगर तुम्हारा रास्ता निकलता है तो ठीक है, वरना मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। इनायत के लिए इतना ही काफ़ी था। वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और उसके आंसू जो अब तक दर्द और तकलीफ से बह रहे थे वो अब खुशी से बहने लगते हैं। मुराद ने फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके जिब्रान को छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही उसने फ़ोन रख दिया वैसे ही इनायत मुराद से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास तुम्हें शुक्रिया कहने के अलावा कुछ भी नहीं है। मुराद बस हैरान नज़रों से इनायत को देखता है और हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है लेकिन मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, बस यही है जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। इनायत जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, मेरे लिए ये भी बहुत है, तुमने जिब्रान को छोड़ दिया ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, पर प्लीज तुम रियाज को कुछ मत बताना। मुराद गहरी सांस लेते हुए हाँ में सर हिलाता है और फिर गाड़ी को दोबारा से हवेली की तरफ मोड़ लेता है। पर पूरी ड्राइविंग के दौरान उसने बस सिर्फ यही सोचा था कि वो इनायत की मदद कर रहा है, क्योंकि अगर रियाज को इस बारे में पता चल जाता तो जिब्रान का क्या होता, इससे तो मुराद का कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन वो इनायत के साथ बहुत बुरा कर सकता था। मुराद ने अभी तक गाड़ी ड्राइव शुरू ही की थी, वो थोड़ा ही आगे आया था कि उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन पर देखता है तो सामने से अहमद का कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो। अहमद कहता है, मुराद तुम कहाँ हो, रियाज भाई तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनते ही मुराद की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो घबराते हुए इनायत को देखने लगता है। जब मुराद कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है तो मुराद को अपने फ़ोन पर रियाज की आवाज़ सुनाई देती है। मुराद के चेहरे पर घबराहट आ गई थी और उसका दिल कांपने लगा था। वो घबराते हुए इनायत को देखने लगता है जिसके चेहरे पर भी घबराहट थी। जी भाई, ठीक है भाई, ये कहते हुए मुराद ने फ़ोन काट दिया। इनायत घबराते हुए मुराद को देखती हैं और हकलाते हुए कहती हैं, क्या हुआ क्या हुआ। मुराद एक गहरी सांस लेता है और इनायत से कहता है, रियाज भाई ने हम दोनों को अभी इसी वक्त अपने ऑफिस में बुलाया है।